हवेली के बड़े डाइनिंग हॉल में उस रात अजीब सी गहमा गहमी थी। लंबी सी मेज पर सफेद मेजपोश बिछा था, बीच में पीतल की पुरानी दीपकदानी रखी थी जिसमें दिया टिमटिमा रहा था। दीवारों पर लगी पुरखों की तस्वीरें जैसे सबको चुपचाप देख रही थीं। सुषमा देवी अपनी तय जगह पर बैठी थीं, मेज के सिरहाने। उनके दाएं रत्ना देवी, सामने विश्वनाथ, बगल में आर्यन और अदिति, थोड़ी दूरी पर रम्या, विशाल और शकुंतला। और श्यामली, वो कुर्सी पर नहीं थी, वो रसोई से आती जाती हाथों में कटोरियां और थालियां लिए सबको परोस रही थीं। कभी किसी की प्लेट में रोटी रखती, कभी सब्जी, कभी दाल। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन शिकन नहीं, आंखों में झुकी हुई शालीनता और चाल में वही सधी हुई विनम्रता। और दाल लीजिए, उसने धीरे से विश्वनाथ से कहा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, हाँ दो चम्मच और। सबने खाना शुरू किया। पहले कुछ पल सिर्फ चम्मचों की आवाज और हल्की सी बातचीत। रम्या ने सब्जी चखते ही कहा, आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। विशाल ने भी हामी भरी, हाँ सच में मसाला एकदम सही है। शकुंतला ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, दाल भी बढ़िया है, हल्की लेकिन स्वाद है। श्यामली खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके होठों पर हल्की सी राहत आई लेकिन वो मुस्कुराई नहीं, बस चुपचाप अगली प्लेट उठाई। और तभी सुषमा देवी ने चम्मच नीचे रख दिया। आवाज तेज नहीं थी लेकिन कमरे में फैल गई। नमक, उन्होंने सब्जी की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ा ज्यादा है। एक पल को कमरे की हवा बदल गई, कोई कुछ नहीं बोला। रत्ना देवी ने प्लेट की तरफ देखा, फिर सुषमा देवी की तरफ, लेकिन चुप रही। बाकी सबको खाना सच में अच्छा लग रहा था लेकिन कोई भी सुषमा देवी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। श्यामली वहीं खड़ी रह गई, उसने सिर झुका लिया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था लेकिन ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो ज्यादा चुभती है। अदिति ने प्लेट से नजर उठाई, उसका चेहरा सच्चा था, बिना किसी चाल के। वो बोल पड़ी, पर बड़ी दादी, उसने मासूमियत से कहा, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, श्यामली ने बहुत अच्छा बनाया है। आर्यन का दिल धक से रह गया, उसने मेज के नीचे से अदिति के पैर को हल्के से छुआ, इशारा किया मत बोलो, लेकिन अदिति समझ नहीं पाई या शायद उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। वो आगे बोल गई, वैसे भी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैंने तो किचन में जाना ही छोड़ दिया है। कमरा पूरी तरह चुप। श्यामली ने अदिति की तरफ देखा, उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। सुषमा देवी ने धीरे धीरे सिर उठाया, उनकी नजर सीधे अदिति पर टिक गई। रत्ना, उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए कहा, तेरी पोता बहू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती। रत्ना देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही, इसे इतना भी नहीं मालूम, सुषमा देवी आगे बोली, कि बड़े कुछ कहें तो उनकी बात काटते नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती आ चुकी थी। आर्यन ने तुरंत अदिति के कलाई को हल्के से दबाया, धीमे स्वर में, चुप। अदिति चुप तो हो गई लेकिन उसकी भौहों के बीच शिकन आ गई। उसके मन में बस यही चल रहा था, मैंने क्या गलत कहा। खाना किसी तरह खत्म हुआ, एक एक करके सब उठने लगे। श्यामली ने प्लेटें समेटनी शुरू की, उसका सिर झुका हुआ था, कंधे थोड़े झुके हुए लेकिन चाल अब भी संयमित। सुषमा देवी बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे की ओर चली गईं। डाइनिंग हॉल फिर से खाली होने लगा। आर्यन और अदिति अपने कमरे में थे। दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम्हें वहां नहीं बोलना चाहिए था, उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। अदिति ने पलंग पर बैठते हुए कहा, पर मैंने तो सच कहा, खाना अच्छा था। सच होना ही हर बार सही नहीं होता, आर्यन ने उसके सामने खड़े होकर कहा। बड़ी दादी बहुत सख्त है, उनके सामने उनकी बात काटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अदिति ने माथा से कोड़ लिया, तो क्या मैं झूठ बोलूं, आर्यन ने उसकी आवाज में उलझन सुनी। उसके पास बैठ गया, नहीं, उसने नरमी से कहा, बस चुप रहो, कुछ बातें कहने की नहीं होती। अदिति उसे देखने लगी कुछ सेकंड, फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तुम मुझे डांट रहे हो, उसने आंखें तरेरते हुए कहा। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अदिति ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इतने सीरियस क्यों हो, उसने धीमी आवाज में कहा। खाना खाया है या भाषण देने आए थे, आर्यन हंस पड़ा। अदिति, अभी, उसने उसकी बात काट दी। उसकी गर्दन के पास झुककर हल्की सी छेड़छाड़ भरी आवाज में बोली, अभी क्या, अब तो सिर्फ तुम और मैं हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हें सच में समझना चाहिए। अदिति ने उसकी बात फिर काट दी, उसके होठों के बहुत पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, कल समझ लूंगी, अभी नहीं। आर्यन ने हार मान ली, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। कमरे में धीरे धीरे वो सख्त बातें, वो डाइनिंग हॉल की ठंडक सब पीछे छूटने लगा। लेकिन हवेली के किसी और कोने में सुषमा देवी जाग रही थी और उनकी चुप्पी अब और गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली हुई थी, खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और बाहर आंगन के पुराने पेड़ की परछाई दीवार पर हौले हौले हिल रही थी। आर्यन ने अदिति को अपने करीब खींच लिया, उसकी आवाज अब बिल्कुल धीमी थी। तुम्हें अंदाजा भी है, वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम कितनी मुश्किल में डाल देती हो मुझे। अदिति ने उसकी आंखों में देखा, वो वही निडर सी चमक थी जो हर बार उसे कमजोर कर देती थी। मैंने क्या किया, वो बनावटी मासूमियत से बोली, सच बोला बस। आर्यन ने उसकी ठुड्डी हल्के से उठाई, यही तो परेशानी है तुम्हारा, सच। अदिति हंस पड़ी। उसकी हंसी में कोई डर नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं। तो फिर वो उसके और पास आई। सच पसंद नहीं है आपको? आर्यन ने उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ रख दिया। स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। तुम्हारा सच मुझे बहुत पसंद है, उसने धीरे से कहा। बस दुनिया हर बार समझने लायक नहीं होती। अदिति ने अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया। उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, थोड़ी तेज, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो। मुझे बुरा लगा, अदिति ने धीमी आवाज में कहा, कि श्यामली कुछ बोले बिना सह गई। आर्यन चुप रहा, उसने बस उसके बालों में उंगलियां फेर दी। तुम्हारा दिल साफ है, वो बोला, इसीलिए तुम सब देख लेती हो। अदिति ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। और तुम?
मैं?
आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें देखता हूँ। अदिति के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। उसने उसकी शर्ट को हल्का सा खींचा। तो देखते रहो, वो शरारत से बोली, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आर्यन ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। कोई जल्दी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक वादा। कमरे में धीरे धीरे वो सख्त बातें, वो डाइनिंग हॉल की ठंडक, सब पीछे छूटने लगा। लेकिन हवेली के किसी और कोने में सुषमा देवी जाग रही थी और उनकी चुप्पी अब और गहरी हो चुकी थी।